भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी पूना के भक्त लोगों को मेरा प्रणाम। और हमारे 2 दिवसीय संध्याकालीन सत्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैष्णव संबंध के विषय में चर्चा हम आरंभ किए थे और कल के संध्याकालीन सत्र में मैंने इस बात की चर्चा की कि पृथु महाराज भगवान के अवतार, इंद्र भी भगवान के अवतार, लेकिन 2 अवतारों में भी मतभेद संभव है। और श्रीमद् भागवत भक्ति की परिपूर्णता, भगवत प्राप्ति की परिपूर्णता का विषय को लेकर हम सभी के सामने विविध विषय प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन भागवत में ये बात स्पष्ट है कि क्योंकि आपका लक्ष्य परिपूर्णता है, इसका अर्थ ये नहीं कि मार्ग भी परिपूर्ण होगा। हाँ, भक्ति मार्ग अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन उस भक्ति मार्ग में यात्रा करने वाले भक्तगण अपने इस भक्ति की यात्रा में कई प्रकार के उतार चढ़ाव अनुभव करेंगे, देखेंगे। और हम सभी को अपने आप को पेशेंट के रूप में, जिस प्रकार अस्पताल में भर्ती हुआ व्यक्ति डॉक्टर के औषधि को लेकर प्रतीक्षा करता है कि कब कुछ बीमारी दूर हो, वैसे ही आपको लोभ मोह मत्सर से प्रेरित ये विविध प्रकार की व्याधियां जिससे हम पीड़ित हैं, उसे मुक्त होने में समय लगेगा। तो इसलिए हर भक्त को चाहिए कि अपने और दूसरे भक्तों को अस्पताल में भर्ती हुए पेशेंट के रूप में देखें। और भागवत के इन प्रसंगों से ये प्रेरणा लें कि अवतारों के स्तर पर भी विचारों में समन्वय लाना कई बार बड़ा कठिन होता है। मतभेद इस जगत का एक वास्तविक नियम है और हम इस मतभेद से बच नहीं सकते। तो वैष्णव संबंध का क्या अर्थ होता है वो यहाँ पर हम देखते हैं। इति चाधोक्षजेयस्य प्रथोस्तु परमोदयम् असूयन् भगवान इंद्र प्रतिघाटम अचीकरत्। तो पृथु महाराज ने विविध प्रकार के यज्ञ किए और भगवान की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होके, आपको सुनाई पड़ रहा है सब ठीक ठाक क्या? तो असूयन भगवान इंद्र, इंद्रदेव के हृदय में असूया इतनी जागृत हो गई कि प्रतिघातम अचीकरत, उन्होंने इस यज्ञ को बाधा, यज्ञ में बाधा डालने का विचार किया। तो अब हम आगे वर्णन करते हैं किस प्रकार इंद्रदेव ने बाधा डाला। चरमेण अश्वमेधेन यजमाने युष्पतिम वैन्ये यज्ञ पशुन स्वधन अपोवाह तिरोहित। वर्णन आ है चरमेण अश्वमेधेन। तो जब अश्वमेध यज्ञ करते हुए 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो चुके थे यजमाने यदुष्पतिम, और तब जब पृथु महाराज अपने 100th या 100वें अश्वमेध यज्ञ में जब आहुति दान कर रहे थे, चरमेण अश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम, यजुष्पति अर्थात भगवान श्री विष्णु की वो पूजा सेवा कर रहे थे, संतुष्ट कर रहे थे। वैन्ये अर्थात पृथु महाराज यज्ञ पशुन स्पर्धन, पृथु महाराज के इस सफलता को बढ़ते हुए देखकर यज्ञ पशुन घोड़े को स्पर्धन, स्पर्धा या द्वेष की भावना से प्रेरित होके अपोवाह तिरोहित। तो अपोवाह अर्थात उनको वहां से गायब किया, उस घोड़े को गायब कर दिया, और इंद्र भी सुप्तावस्था में थे। तो इंद्र भी छुपे हुए थे और छुपे हुए अवस्था में उन्होंने चुपचाप इस संपूर्ण अश्व को गायब करने का प्रयत्न किया और उनको लगा कि अगर मैं इस अश्व को गायब कर दूं तो ये सोम अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाएगा और फिर ऋतु महाराज स्वर्ग के स्वामी नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण तात्पर्य आते हैं। सबसे पहले इंद्र का नाम कहा गया है शतक्रतु, अर्थात 100 अश्वमेध की जिसने किए, इसलिए उनके मन में बड़ा भय था कि कोई मुझसे अधिक ये यज्ञ न करे। और क्योंकि वो वास्तव में द्वेषी थे, चाहे वो इंद्र के पद पर क्यों न हो, द्वेष एक ऐसा भयंकर विषधर भुजंग है जो उसकार मात्र स्वर्ग के देवता को भी विनष्ट कर देता है और उसकी चेतना उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और उन्होंने इस यज्ञ अनुष्ठान के कार्य को बाधा डाल दी। तब उस समय अथर्व ऋषि ने देखा कि इंद्र वहां से भागते हुए जा रहे हैं इस अश्व को लेकर, घोड़े को लेकर। तो अथर्व मुनि ने तुरंत पुत्र को तुरंत संकेत किया और कहा कि देखो वो चोर की भांति लेके भाग रहा है, उसको रोको। तो जैसे ही पृथु महाराज के पुत्र अपने हाथ में तलवार लिए इंद्र का पीछा करने लगे, इंद्र ने अलग साधु संतों का वेश धारण कर लिया जो कि असंप्रदाय के लगे हुए थे। तो इसलिए अधर्म को प्रेरित करने वाले ऐसे वेशभूषाओं को धारण किया इंद्र ने। और यहां वर्णन आता है कि उसको देखकर पीछे पीछे भाग रहे हमारे पृथु महाराज के पुत्र अपने हाथ में तलवार लिए उनको कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन उस समय इंद्र वहां रुके नहीं, भागते चले गए। और अब अत्रि बार बार कह रहे थे मारो इसको मारो, लेकिन पृथु महाराज के पुत्र का हाथ नहीं चल पाया क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर कोई साधु संत महात्मा भाग रहे हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो इसलिए अत्रिणा चोदितो हन्तुम पृथुपुत्रम महारथ अन्मधावत संक्रुद्धेत च अब्रवीत। तो उनको कहने लगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस समय लाल कपड़ा धारण करके इंद्र वहां पर सभी के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे थे। लिखते इसमें Saffron announces to the world that I have renounced all worldly affairs। गेरुआ वस्त्र का अर्थ किया कि मैंने भौतिक सारे त्याग दिए। And I am simply engaged in service of the Lord, कि मैं केवल भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ। अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करो। तो इस प्रकार से हम ये घोषणा करते हैं इस लाल कपड़े के माध्यम से कि मैं भगवत भक्ति पूरी तरह लगा हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं unless one is very sincere, one should not take to the renounced order of life। जब तक इच्छा प्रामाणिक न हो और जब तक हम पूरी तरह लगे न हो, one should not take up संन्यास इन कलियुगा। प्रभुपाद लिखते हैं पांच बातें जो कि पांच बातें कलियुग में वैराग्य का विरोध करते हुए प्रभुपाद लिखते हैं। One should not take a renounced order, number one, to cheat the public, number two, because provocations are very strong in this age। जो आकर्षण के पहलू हैं बहुत शक्तिशाली हैं कलयुग में। तीसरा, only very exalted person, advanced in spiritual understanding, should attempt to take a sannyas। सन्यास जो है बड़े ही प्रगतिशील चेतना वाले धारण करने चाहिए। चौथा, हमें केवल अपने रोजगार कमाने के लिए वैराग्य धारण नहीं करना चाहिए। और पांचवा, कोई भौतिक कार्य के लिए वैराग्य धारण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये पांच बातें पर इंद्र के उस घोड़े को चुराने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप उनके गेरुए वस्त्र पहनने के ऊपर रघुपाद जी इस प्रकार के लोगों की आलोचना करते हैं जो लाल कपड़ा जो पहने हैं वो केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए, ये उचित नहीं। तो इसलिए यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आया है कि इंद्र को उस प्रकार की वेशभूषा में देखकर, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, विद मैटेड लॉक्स एंड स्मियर्ड इन एशेस, प्रथु सन थॉट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, सो इट्स नॉट प्रथु के पुत्र, उनको लगा कि ये बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। तो फिर अत्री ने कहा, अरे नहीं भैया, कोई धार्मिक कर्मिक नहीं है, मक्कार है, मारो इसको पकड़। तो फिर वो सोचने लगे, करे तो क्या करे, भागे और पीछे पीछे भाग गए तो उसमें इंद्रदेव घबराकर उस घोड़े को वहीं छोड़ गए और अपने लाल कपड़े वहीं छोड़ दिए और वहां से भाग निकले। तो इस प्रकार प्रद्युम्न महाराज के पुत्र उस अश्व को पुनः लेके आए, इसलिए उस दिन से उनका नाम हो गया विजिताश्व, अर्थात जिस व्यक्ति ने अश्व को, घोड़े को वास्तव में जीत कर लाया है। तो जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो एक तो उस गलत कार्य या पाप का फल लगता है, लेकिन उसके साथ साथ उस पाप को पुनः करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इंद्र ने एक बार इस प्रकार की बेवकूफी की, लेकिन क्योंकि उनको मारा नहीं, इसलिए उनके मन में उत्साह आ गया कि फिर से एक बार फिर हम इसको चुराएंगे। तो ये गलती करने का सबसे प्रॉब्लम ये है कि अगर गलती करने के बाद तुरंत दंड नहीं मिलता तो फिर उस गलती को पुनः दोहराने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए इंद्रदेव फिर आए और फिर उस अश्व को चुरा के लेके गए। अति मुनि फिर देखे इंद्र को लेके भागते हुए, फिर पृथु महाराज के पुत्र को कहा, मारो इसको। जब तक पृथु महाराज के पुत्र गए, फिर इंद्र ने अपना वेश बदलकर अलग अलग साधु संतों का वेश धारण कर लिया था। तो समय यहाँ वर्णन आता है, वीरश्च अश्वम उपादाय पितृयज्ञम अथावजत तत् अद्यम हरे रूपम चतुर्ज्ञादुर्बलः। मैं थोड़ा ये पंखे को बंद करता हूँ जिससे आवाज और स्पष्ट आएगा। तो यहां बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आया है कि वीरश्च अश्वम आदाय उपादाय, उस अश्व को लेकर विजिताश्व लौट के आए, वीरश्च अश्वम उपादाय पितृ यज्ञम अथावृजत, अपने पिता के यज्ञ में, पृथु महाराज के यज्ञ में पुनः उस घोड़े को ले आए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है, क्योंकि उस अश्व को, उस जो घोड़े को पुनः लौटा के लेके आए, लेकिन इंद्र उसके कारण बच गए, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि इंद्र ने घोड़े को चुराया था। लोगों ने क्या देखा कि घोड़े को चुरा कर इंद्र कैसे बचे, वो लाल कपड़ा पहनकर। तो उनके मन में यही प्रेरणा आई कि भाई अगर कोई गलत काम करना हो तो सबसे अच्छा कवच समाज में ये लाल कपड़ा है। तो इसलिए यहां वर्णन आता है, तद अवध्यम हरे रूपम जग्रहुर ज्ञान दुर्बल। तो अवध्यम मीन्स अबोमिनेबल, हरे रूपम इंद्रास ड्रेस, जग्रहुर मीन्स एडॉप्टेड, ज्ञान दुर्बल फूलिश पीपल। सो फूलिश पीपल आफ्टर दैट एडॉप्टेड द अबोमिनेबल ड्रेस ऑफ इंद्रा हु वाज नॉट किल्ड। जो मूर्ख लोग हैं वो सोचने लगे कि कपट के लिए, दंभ के लिए ये बड़ा अच्छा उपाय है कि गलत कार्य भी करो और पकड़े भी ना जाओ, और इस प्रकार वो अपना ही संप्रदाय आरंभ करने लगे जिसके अंतर्गत वो दूसरों के धन को चुराना हो, शरीर को अचानक गायब कर देना हो, अलग अलग प्रकार से मांसाहार इत्यादि करते हुए भी अपने आप को साधु घोषित करना हो, हर प्रकार के जादू टोना इत्यादि करते हुए इंद्र के द्वारा प्रेरित ये जो गेरुआ वस्त्र लोगों ने दुरुपयोग किया, धर्म ध्वजी कहलाए, क्योंकि धर्म का ध्वज पहनकर घूम रहे थे, लेकिन वास्तव में अधार्मिक कार्य वो कर रहे थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास क्यों धारण किया, तो ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में स्पष्ट वर्णन है। क्या? कि सन्यास मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाएं होए संसार धारण। जो व्यक्ति केवल मुकुंद की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है, जो 24 घंटे केवल भगवान को संतुष्ट करने लगा है, वो वास्तव में सन्यासी है। आमने स्तरिते तोमार इहा आगमन, परम दयालु तुमि पतित पावन। आप परम दयालु हो, आप पतितों के पावन हो हे महाप्रभु। वेद निष्ठा मध्य अर्धे वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नहीं बने। जो जानता है क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भी वो करता है, वो वास्तव में पतित है। महंत स्वभाव ए तारिते पामर, निज का नहीं तबु या तार घर। महात्माओं का ये लक्षण होता है कि वो ब्रह्मांड का विचार करते हैं दूसरों को कृष्ण ज्ञान देते हुए, मन में केवल एक ही विचार संकल्प लेकर, कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण को संतुष्ट करूं। तो वास्तव में अगर हमको वैरागी बनना हो, तो वैराग्य का अर्थ केवल वस्त्र नहीं, वैराग्य का अर्थ है कि मन में केवल एक ही विचार हो कि मैं कृष्ण की सेवा करके उन्हें कैसे संतुष्ट करूं। जिस व्यक्ति के मन में एकमात्र ये विचार हो कि मैं कृष्ण की किस प्रकार सेवा करके उनको संतुष्ट करूं, वो व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, वो वास्तव में वैराग्य के मर्म को पकड़ लिया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहते हैं, कथा आप सुनाओ और मैं आपके मुख से कथा सुनूंगा। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे आगे कह सुनते पाए शुके, अपूर्वामृत नदी बहे तो मार मुखे। आपके मुखारविंद से एक अमृतमय नदी प्रवाहित हो रही है कृष्ण कथा की, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो रामानंद राय विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हृदय प्रेरणा कह जिह्वाए कहो बाणी, कि कोही ये भाल मंद कि छुई न जानी। प्रभु, वास्तव में श्रेय तो आपको जाता है कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हो, जिस कारण मैं कृष्ण कथा सुना पा रहा हूं, और इसीलिए मैं केवल आपके ऊपर आश्रित हूं। फिर महाप्रभु कहते, नहीं, वास्तव में मैं तो केवल मायावादी सन्यासी हूं, भक्ति तत्व नहीं जानी, मायावादी भासी। सर्वभौम संगे मोर मन निर्मल होइला, कृष्ण भक्ति तत्व कह तारे पूछिला। तो कहते हैं कि मैं सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछा, कृष्ण भक्ति तत्व कहो, क्योंकि उनके संग में मेरा मन निर्मल हो गया। देखो कहे आम नहीं जाने कृष्ण कथा, सबे राम आनंद जाने ते हो नहीं ए था। तब महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में वो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, मैं कुछ नहीं जानता कृष्ण कथा, सब रामानंद जानते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, अरे रामानंद राय, मैं जानता हूं कि तुम राजनीति में रचे पर गवर्नर हो, कायस्थ हो जो शूद्र की श्रेणी में आता है, गृहस्थ हो। मैं सन्यासी हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, लेकिन फिर भी तोमार ठाने आइला तोमार महिमा सुनिया, तुम्हें मोर स्तुति कर सन्यासी जानिया। आपकी महिमा को सुनकर जानकर मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी स्तुति कर रहे हो मुझे सन्यासी देखकर, इस प्रकार मेरी स्तुति करोगे तो उचित नहीं होगा। मैं केवल आपसे कृष्ण कथा सुनने आया हूँ। और फिर महाप्रभु बड़ा प्रसिद्ध श्लोक सुनाते हैं, কিবা বিপ্রা কিবা ন্যাসি শূদ্র কেনে নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত সেই গুরু হয়। কি বাস্তবে চাহে কোই ব্রহ্মচারী হো, গৃহস্থ হো, কোই ভি শ্রেণী মে ক্যো ন হো, যদি ও কৃষ্ণ তত্ত্ব কো জানেগা ও গুরু হে। ইসলিয়ে ইহাঁ পর ইন্দ্র নে জো অলগ অলগ প্রকার কে বৈরাগী কে বস্ত্র ধারণ করকে লোগো কে আঁখো মে ধুল ঝোঁকনে কা প্রয়াস কিয়া। ইয়ে বাস্তব মে বহুত বড়া অধর্ম কা প্রতীক থা। রাবণ ভি ऐसे ही लाल कपड़े पहनकर सीता देवी का हरण करने आए, तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य की परिभाषा को पूरी तरह परिवर्तित कर दी और महाप्रभु ने हर भक्त को हर परिस्थिति में वैराग्य का अवलंबन करने का अवसर दिया है। केवल अपने मानसिक विचारों को संतुलित करके अगर हम मन में कृष्ण की सेवा करने का विचार करें तो अपने आप वैराग्य के परमोच्च लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां वर्णन आता है इंद्र ने जो कार्य किया उसका परिणाम क्या हुआ। धर्मैति उपधर्मैति नग्नत्र पटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांत्या पेशलेषु च वाग्मिषु। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई जब छोटा आदमी गलती करता है तो उसका परिणाम छोटा होता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के नेता जैसे इंद्र देवताओं के स्वामी अगर कोई गलती करें, दंड करें, कोई गलत कार्य करें, कोई अधर्म का कार्य करें तो उसका परिणाम बड़ा घातक सिद्ध होता है संपूर्ण समाज के लिए। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक सुनिए। इसके हैं धर्मैति उपधर्मेषु, इस प्रकार का वस्त्र पहनना जिससे लोगों को लगे वो धर्म है लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं था, वो छल था। नग्न रक्त पटादिशु, तो इंद्र ने जो वस्त्र पहने उसे प्रेरित होकर आज कलयुग में कई लोग बिना वस्त्र के, कई लोग लाल कपड़े पहनकर, पटादिशु अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण कर, प्रायेण सज्जते भ्रांत्या, प्रायेण अर्थात जनरली प्रायः, हाँ सज्जते अर्थात आकर्षित करते हैं, भ्रांत्या कैसे भ्रांत धारणाओं से, वास्तविक धर्म के ऊपर आधार पर नहीं भ्रांति की धारणाओं से, कैसे दो रूपों से कलयुग में लोग आकर्षित होते हैं, पेशलेषु च वाग्मिषु। पहला है वस्त्र, वैराग्य के वस्त्र, और दूसरा पेशलेषु। पेशलेषु शब्द का अर्थ है एक्सपर्टीज, निपुणता, नैपुण्य, अर्थात किसमें निपुणता, वाग्मिषु वाणी में, अर्थात शब्दों के हेरा फेरी में, शब्दों के खेल में अगर कोई बाही निपुण और पटु बन जाए तो उसके केवल इस प्रकार के शब्दों के हेरा फेरी मात्र से लोग उसके प्रपंच में आ जाते हैं। पेशलेषु च वाग्मिषु, तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से करोड़ों वर्ष पूर्व इस बात की घोषणा कर दी कि इंद्र ने पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि लोग भविष्य की पीढ़ियों में केवल अपने वस्त्रों को परिवर्तित करके और केवल वाक चातुर्य से बहुत चतुराई के साथ शब्दों का हेरा फेरी करके लोगों के मति को आकृष्ट कर सकते हैं और उनके आंखों में धूल झोंक सकते हैं और उन्हें वास्तविक धर्म के मार्ग से पथभ्रष्ट करके जीवन भर के लिए उनको अधर्म के गर्त में डुबा सकते हैं। ये इंद्र के द्वारा किया गया बड़ा अधर्म था। आज भी भारत में लोग इस्कॉन को जानते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इतने लोग इस्कॉन को जानते हैं, उतने लोग श्रीला प्रभुपाद को नहीं जानते। इतने बड़े शुद्ध भक्त, सेनापति भक्त, जिन्होंने प्रभुपाद, जिन्होंने संपूर्ण भागवत को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, विश्व भर में उन्होंने एक गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए क्रांति मचाई, लेकिन श्रीला प्रभुपाद के विषय में लोग इतना नहीं जानते जितना अर्वाचीन समय में कई प्रकार के लोग जो शब्दों का हेरा फेरी करके अलग अलग प्रकार से शब्दों को घुमा फिरा के लोगों को तर्क के आधार पर आकर्षित कर लेते हैं। तो इसकी भविष्यवाणी उस समय हुई चौथे स्कंद में, पेशलेषु च वाग्मेषु एवं इंद्रे हरत्यश्वं वैन्ययज्ञं जिघांसया तद्गृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नाम। तो एवं इंद्रे हरति अश्वम, फिर इंद्र ने जब पशु को छुड़ाया, वैन्ययज्ञं जिघांसया, और फिर पृथु महाराज के यज्ञ को रोकने का प्रयास किया, तद्गृहीत विसृष्टेषु, और तब उन्होंने अलग अलग प्रकार के पाखंडेषु मतिर्नाम, पाप पूर्ण वस्त्र पहनकर लोगों के मति को आकर्षित करने लगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, पीपल्स टेंडेंसी सिंस टाइम इमेमोरियल इज टू बी अट्रैक्टेड टू थ्री थिंग्स, देयर पीपल आर अट्रैक्टेड। लोग, प्रभुपाद लिखते हैं, कलयुग में लोग तीन प्रकार के तथाकथित धार्मिक लोगों से आकर्षित होते हैं। पहला, कोई कपड़ा न पहनना, दूसरा लाल कपड़ा पहनना, और तीसरा बड़े चतुराई के साथ शब्दों का प्रयोग करना। ये तीन कार्य जो करता है उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं, रिनंसिएशन इज नॉट एनी ऑफ दीज थ्री। दुर्वासा मुनि के पास कपड़े नहीं थे, लेकिन अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के ऊपर आक्रमण किया, तो अम्बरीश महाराज भगवान पर निर्भर थे। जो व्यक्ति भगवान पर निर्भर हो वो वैरागी। और तब दुर्वासा मुनि कहते हैं, वो अनंत दासा महत्वम दृष्टमध्य में कृतागसोपियन राजन मंगलानि समीह से। अर्थात आज मैं वैष्णव भक्त को पहचान लिया, क्योंकि तो लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा तो उसके अंदर वैराग्य कैसे हो सकता है। लेकिन मैं जगत के सामने यह सिद्ध करना चाहता हूं कि वास्तविक वैष्णवता वस्त्र के ऊपर आधारित नहीं, हमारे भाव के ऊपर और हमारे उद्वेग से भरी परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के ऊपर आधारित है। तो हर प्रकार के आध्यात्मवादियों में वैष्णवों की पहचान कैसी होती है? केवल वैष्णव होते हैं जो क्षमाशील हो सकते हैं, और इसीलिए ये क्षमा की भावना को देखकर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को पहचान ली। तो इसलिए यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, रिनंसिएशन इज टू मेडिटेट एंड टू बी एब्जॉर्ब इन द मेडिटेशन ऑफ हाउ कैन आई सर्व कृष्णा एंड हाउ कैन आई प्लीज कृष्णा। अगर हमको वैष्णव संघ में वैष्णव संबंध बढ़ाने हो, तो वैष्णव समुदाय में हर भक्त के मन में अगर ये दो प्रश्न निरंतर गूंज रहे हो, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा, हाउ कैन आई प्लीज कृष्णा, मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं, मैं कृष्ण को कैसे संतुष्ट करूं, अगर इन दो प्रश्नों का निरंतर गुंजारव हमारे हृदय के संपूर्ण स्थल में होता रहे, तो अवश्य ही हम दूसरे वैष्णव भक्तों के साथ प्रेम के संबंध को स्थापित कर सकते हैं। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, तब आपना क माने तृण होते हीन। रूप और सनातन के अंदर विद्या भक्ति बुद्धि बल सब प्रगाढ़ मात्रा में थी, फिर भी अपने आप को तृण से भी हीन मानते थे। और वो केवल निरंतर इसी बात का विचार करते रहे कि मैं कैसे कृष्ण को संतुष्ट करूं। तो अब इंद्र ने ऋतु महाराज को उद्वेगित कर दिया। तद अभिज्ञाय भगवान पृथु पृथु पराक्रमः इंद्राय कुपितो बाणम आदत्त उद्यत कार्मुकः। अब हमारे विषय का मूल भाग आ रहा है, क्योंकि जब दो वैष्णव अपनी अपनी सेवा में लगे हैं या फिर एक दूसरे की सेवा को अड़चन या बाधा करने का प्रयास करता है, तब फिर दोनों में मतभेद आरंभ होता है, कलह आरंभ होता है। तद अभिज्ञाय उसको जानकर, किसको जानकर, कि इंद्र मेरा घोड़ा चुरा रहा है, मेरे यज्ञ को यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है, पृथु पृथु पराक्रमः, पृथु महाराज जो कि अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, और तब इंद्राय इंद्र के ऊपर कुपितो बाणम उद्यत होकर बाण चलाने लगे, आदत्य उद्यत कर्मत, तो अपने धनुष के ऊपर बाण लगाकर उसे चलाने के लिए तैयार हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य, किसी भी राजा या प्रशासक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में कभी किसी प्रकार के अधर्म को सहन न करे। और प्रभुपाद लिखते हैं सारे राष्ट्र के नेताओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो हर प्रकार के अधर्म को समाप्त करे, और किसी भी क्षेत्र को या राज्य को धर्म निरपेक्ष घोषित करने का क्या परिणाम होता है? उसका परिणाम ये होता है, प्रभुपाद लिखते हैं, कि वास्तव में वास्तविक धर्म उसके बारे में लोग भूल जाते हैं और आध्यात्मिक प्रगति के विषय में लोग पूरी तरह उदासीन हो जाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में समाज दुर्गति की ओर अग्रसर होने लगता है। और तब जैसे ही पृथु महाराज ने अपना धनुष के ऊपर बाण रखा और बाण चलाने ही वाले थे, तभी सारे पुरोहित आकर पृथु महाराज से निवेदन करने लगे। तम ऋत्विज शक्र वद अभिसंधितम विचक्ष दुष्प्रेक्षम सह्य रमहसम निवारयामासु अहो महामते न युज्यते अत्र अन्य वधः प्रचोदिता। तब ये पुरोहित कह लगे, तम ऋत्विज शक्र वध अभिसंधितम, शक्र को या इंद्र को मारने तैयार होते हुए देखकर कहने लगे, निवारयामासु, अरे इंद्र ऐसा मत करो, मत मारो, उचित नहीं है आपको। क्यों? महामते, अरे आप तो याजमान हो, याजमान का कर्तव्य बनता है कि वो इस यज्ञ को संपन्न होने दें। न युज्यते अत्र अन्य वधः प्रचोदितात्, इस यज्ञ में केवल अश्व, केवल घोड़ा ही मर सकता है, कट सकता है, और भी नहीं, इसलिए इंद्र को मारना उचित नहीं। तो अभिसंधितम कर्त है, उन्होंने विचार किया, और विचक्ष है देखकर। तो यहां पर यह वर्णन आ रहा है कि इंद्र के लिए भी उस यज्ञ में आहुति चढ़ाई जा रही थी, इंद्र की भी पूजा हो रही थी, क्योंकि इंद्र भी यज्ञ अनुष्ठान के भाग को स्वीकार करते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक अंश हैं। तो इसलिए ये सभी पुरोहित मिल कहते हैं पृथु महाराज को, हे पृथु महाराज, आप अपने हाथों से इंद्र का वध मत करो, हम लोग मंत्रों की शक्ति से इंद्र को यहां खींच कर उसे ही इस यज्ञ के अग्नि में पटक कर भस्मीभूत कर देंगे। मारना ही है तो फिर आप तो जानते ही हो कि आपके पिता को भी तो हमने ही खत्म किया, तो इसलिए हम लोगों का ये सब काम करने में बहुत अनुभव है, तो आप निश्चिंत रहिए, इस यज्ञ में कोई खून नहीं निकलना चाहिए, भले अग्नि में कोई भस्मीभूत हो जाए वो चलेगा, तो हम लोग तैयार हैं इस कार्य को करने के लिए। तो अब ऐसा कहकर वो मंत्र उच्चारण करना आरंभ किए और इंद्र को खींचने लगे। और तब ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के जीबीसी हैं, तो देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के मंदिर में प्रेसिडेंट लोग संभाल नहीं पा रहे, तो फिर खुद उनको उतर के आना पड़ता है कि भाई टेंपल मैनेजमेंट में और लोगों में अगर उत्पात मची हुई है तो किस तरह उसको बचाएं, हस्तक्षेप करें। तो ब्रह्मा जी तुरंत वहां पर प्रकट हुए। तो भागवत इस बात का प्रतिपादन करता है कि पूरे ब्रह्मांड में देयर इज एन ऑटोमेटिक चेक एंड बैलेंस। किसी व्यक्ति को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं सारे प्रकृति के परे हूं। Nobody is above the law and order protocol and system. कोई भी व्यक्ति सिस्टम के ऊपर नहीं है। तो उस समय जो यहां पर वास्तव में ऋषि मुनिगण जो कर रहे थे, भगवान ने उनसे ऐसा क्यों करवाया? यहां पर आखिर में लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि ये पुरोहित जो मंत्र पढ़ के, और वो लोग भी रेगुलर मंत्र बोलते थे, इंद्राय स्वाहा बोलते थे, अर्थात इंद्र को आहुति दे, इंद्र को आहुति जाए। इंद्राय स्वाहा बोलने वाले पुरोहित इंद्र को ही स्वाहा करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? ये दिखाने के लिए कि जो कर्म और कर्म कांड के मार्ग में लगे हैं वो भी कभी कभी इस मार्ग में क्रोध से, लोभ से अंधे हो सकते हैं। अर्थात केवल एक भक्ति ही मार्ग है, या नास्थ है नरो राजन न प्रमादित करहिचित धावन नित्रे न पतित न स्खलित इह। केवल ये भक्ति के मार्ग में ही हम स्पष्ट देख पाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करने कि ब्रह्मा शिवा इंद्रा तीनों का उदाहरण देख लीजिए। ब्रह्मा वॉज ब्लाइंडेड बाय लस्ट, शिवा वॉज ब्लाइंडेड बाय एंगर, एंड इंद्रा इज ब्लाइंडेड बाय एनवी एंड क्रूकेडनेस। तो इससे भागवत दिखा रहा है कृष्ण के आगे ये तीनों फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा अपने पुत्री के पीछे पागल हो गए थे, कामाधीन। शिवजी, ब्रह्मा जी ने शिवजी जो है क्रोधावेश में आ गए और अपना तीसरा नेत्र खोल बैठे। तो इंद्र जो है द्वेष और इसके अंदर वो पकड़े जाते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर सबसे पहले कहते हैं कि किस तरह आप दोनों के बीच इस मतभेद को रोकना है। तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। मान लो आपका किसी भक्त के साथ मतभेद चल रहा हो, या आपका किसी के साथ संबंध उचित नहीं हो, या फिर आपका कहीं कलह चल रहा हो, क्योंकि कलह भी अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। कभी पैसिव होता है, कभी एक्टिव होता है, कभी डोरमेंट होता है, तो वो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले देखो कि आपका कर्तव्य क्या है। प्रतु महाराज, आपका कर्तव्य क्या है? न वध्यो भवताम इंद्रो यद्यज्ञो भगवत तनुः यम जिगांस यज्ञेन यज्ञेष्टात्मसुराः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए, जब एक वैष्णव का दूसरे वैष्णव के साथ मतभेद होके कलह आरंभ हो, तो तीसरे वैष्णव को बीच में आके हस्ताक्षेप करना पड़ता है, और जब वो उपदेश करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको ध्यान से सुने। जब ब्रह्मा जी आए, ऋतु महाराज ने बाण उनको नहीं दिखाया कि अरे भैया, अच्छा खासा ये लोग का चल रहा था, अभी मरने ही वाला था, इंद्र बीच में कहां से आ गए? नहीं, शांति से वो सुने। क्या ब्रह्मा कहते हैं? न वध्यो, मत मारो, समाप्त न करो भवताम, आप इसको इंद्र को, इंद्रो यज्ञ भगवत तनु क्यों? क्योंकि इंद्र भगवान के ही एक अंश हैं। भगवत तनु ही इज द बॉडी ऑफ द लॉर्ड, अर्थात वो भी भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार हुए। यम जिघाम सत यज्ञेन युविष्टुकिल इंद्राभय सैक्रिफाइस यस्येष्टा तनव सुराः इन विच द देवताज पार्ट ऑफ हिज बॉडी वर्शिप। अरे भाई, जितने देवताओं की सेवा पूजा हो रही है इस यज्ञ के माध्यम से, वो देवता इंद्र के ही शरीर के अंश हैं। इंद्र को मारोगे तो सारे देवताओं को समाप्त करोगे, अरे पूरे ब्रह्मांड में चक्का जाम कराओगे क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मुझे उतरना पड़ेगा और मुझे संभालना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को गड़बड़ मत करो, अपने क्रोध को नियंत्रण करो, संभलो। और इस प्रकार ब्रह्मा जी आकर प्रतु महाराज को शांत करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहते हैं भवताम, अर्थात ब्राह्मणों का ये कर्तव्य नहीं है कि वो भगवान के स्वरूप को समाप्त करें। अरे आप लोग पुरोहित ब्राह्मण हो, इंद्र भगवान का शरीर है, ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को जाने, आप कैसे ब्राह्मण हो कि इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गए जो कि भगवान के ही तनु। दूसरा, आप यज्ञ के माध्यम से इंद्र को समाप्त करना चाहते हो, लेकिन इंद्र स्वयं साक्षात यज्ञ के स्वरूप हैं। जो यज्ञ के स्वरूप हैं, ऐसे यज्ञ के स्वरूप को यज्ञ से कैसे मारा जा सकता है, विचार करो। तीसरा कि सारे देवता भी तो इंद्र के शरीर के अंश हैं, इसीलिए आपको समाप्त करना उचित नहीं इंद्र को। तो जब संबंध बुरे हों और ऐसा लगे कि संबंध लगभग समाप्त हो रहा हो, तो हम दोनों के बीच अगर मतभेद हो तो तीसरे ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए उस मतभेद दूर करने और संबंध को स्थापित करने, जिसके प्रति दोनों लोगों का सम्मान हो। तो प्रभु महाराज भी सम्मान कर रहे थे और इंद्र भी ब्रह्मा जी को सम्मान करते थे, और इसलिए ब्रह्मा जी का वो पद था कि वो इंद्र और प्रभु महाराज दोनों के बीच शांति प्रस्ताव को स्थापित कर सकें। तत्पश्चात वो कहते हैं कि देखिए, इंद्र ने के माना कि इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा कर बहुत बड़ा पाप किया। हाँ, इसके कारण पृथु महाराज का 100वां अश्वमेध यज्ञ रुक गया, लेकिन इंद्र केवल घोड़े को चुराए नहीं, लेकिन घोड़े को चुराने के बाद लाल कपड़ा भी पहने, अलग अलग अपसंप्रदाय का निरूपण किया। तो वास्तव में पृथु महाराज के इस 100वें अश्वमेध यज्ञ के भय से इंद्र भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं, अधर्म के प्रतीक को पैदा करके। इसलिए जितना अधिक इंद्र उद्वेगित रहेंगे उतना अधर्म बढ़ेगा, और इसलिए मैं आपको कहता हूं, हे पृथु महाराज, पृथो कीर्ते पृथो भूया तरहो एकोन शतः क्रतु अलम ते क्रतुभिर स्विष्ट ही यद भवान मोक्ष धर्मवित्। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जिसमें कहते हैं, पृथु महाराज आपको अपने स्वर्ग के सत्ता शक्ति और स्वर्ग राज गद्दी के विषय में चिंता है क्या? आपको स्वर्ग के राज गद्दी पर बैठना है या भगवान श्री कृष्ण के हृदय के ऊपर बैठना है? आपको भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करना है या स्वर्ग में प्रवेश करना है, ये विचार कीजिए। तो पृथु महाराज कहते हैं, मुझे तो कृष्ण के हृदय में प्रवेश करना है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, जब भी किसी वैष्णव के साथ झगड़ा हो, कलह हो, मतभेद हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से आप अपने दिमाग को रिवाइंड करके लेके जाओ कि मैं इस्कॉन में क्यों आया, मेरे इस्कॉन में आने के पीछे मूल कारण क्या है? मैं क्या न्याय पाने आया? मैं धन पाने आया, सत्ता पाने आया, प्रतिष्ठा पाने आया, या प्रेमा भक्ति प्राप्त करने आया? तो जो कुछ भी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल हो उसे तिरस्कृत कर देना चाहिए मुझे। तो इसलिए प्रथु कीर्ते है, आपको बड़े कीर्ति की आवश्यकता है ना प्रथु महाराज, चिंता मत करो, मेरे आदेश के अनुसार ये 100 हॉर्स सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो आप इंद्र से भी कोटि कोटि गुना अधिक प्रसिद्ध हो जाओगे। प्रथु कीर्ते है प्रथु भूया तरहु एकोण शतुकृत, 100 से 1 कम अर्थात 99। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं लोगों को लगता है कि अपने कर्म और अपने कर्म के अनुसार हम वास्तव में शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम भगवान की इच्छा के अनुसार शक्ति प्राप्त करते हैं, वैष्णवों के आशीर्वाद के अनुसार शक्ति प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल ब्रह्मा जी जैसे वैष्णव आशीर्वाद प्राप्त करके प्रथु महाराज इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली और यशस्वी बन गए। अश्वमेध यज्ञ करके नहीं, अश्वमेध यज्ञ को तिलांजलि देके। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव की इच्छा के सामने अपना मस्तक झुकाया, और क्योंकि वैष्णव की इच्छा के आगे उन्होंने अपना शीश झुकाया, वैष्णव प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उस आशीर्वाद से पृथु महाराज विश्व प्रसिद्ध हो गए और उनका नाम भागवत में आ गया। तो पृथु महाराज पूछते हैं आप कहना क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी कहते हैं 99 इज अ ग्रेट नंबर। तो यहां 99 100 वाली बात नहीं है, भक्ति में नियम है कि हम कैसे वैष्णव को प्रसन्न करें, संतुष्ट करें। अगर आपने सोचा कि मैं वैष्णवों को प्रसाद खिला के संतुष्ट करूंगा और आपको लगा कि कम से कम 1 दर्जन चपाती तो मैं इस वैष्णव को खिलाऊंगा, लेकिन वो वैष्णव बोल रहा मेरा पेट भरा हुआ है मुझे केवल 1 खिलाओ, तो उसको आप 10 खिलाकर उसका कोप और उसका श्राप लोगे, और यदि उसने कहा 1 खिलाओ और 1 खिलाओगे तो फिर उसकी प्रसन्नता से आशीर्वाद मिलेगा। तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम ऐसा क्या करें जिससे भक्तगण वैष्णवगण उस परिस्थिति में संतुष्ट हो। यह मूल तत्व है यहां पर, क्योंकि भौतिक विद्या भौतिक समाज आजकल नंबर के ऊपर बहुत अधिक आकर्षित हो गई है, अधिक कमाओ अधिक प्राप्त करो ये करो वो करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रथो कीर्ते हे, आप केवल मेरी इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता व्यक्त करके इंद्र से भी अधिक प्रसिद्ध हो जाओगे और उससे आपका यश संपन्न होगा। और ये प्रथु कीर्ति किसके कारण होगा? मेरे आशीर्वाद के कारण। तो अर्थात वैष्णव रिलेशनशिप्स, इसका मूल अर्थ क्या है? जब हम वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करें तो वैष्णवों के आशीर्वाद से हम उचित वैष्णव संबंध स्थापित कर पाते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कॉम्प्रोमाइज इज वर्कड आउट बाय द वैष्णव गुरु, अ कॉम्प्रोमाइज वर्कड आउट बाय अ वैष्णव गुरु एलिवेट्स द कॉन्शियसनेस अबव कॉम्पिटिशन एंड एनवी। तो वैष्णव गुरु के माध्यम से किया गया समाधान स्पर्धा और द्वेष से परे हमारी चेतना को लेके चलता है। नंबर 99 इज वन शॉट ऑफ 100। कई बार लगता है कि 100 मतलब ये परफेक्ट हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके लिए हे पृथु 99 परफेक्ट है। क्यों? 99 पे रुक जाओगे तो इंद्र उद्वेगित नहीं होंगे, और उद्वेगित नहीं होंगे तो अलग अलग प्रकार के और अधर्म के प्रतीक को फैलाएंगे नहीं और धर्म का प्रचार नहीं होगा। तो भले तो पृथु महाराज बोल सकते, लेकिन ब्रह्मा जी मेरा व्रत अधूरा रह गया, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्ति में सेवक की इच्छा अपूर्ण रहे तो चलेगा, स्वामी की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो गई 99 में रुक गए तो उससे आपका प्रयास सफल हो गया। तो इसलिए कई बार हम लोगों को लगता है कि संतोष की परिभाषा है कि मैं अपनी इच्छा को अपने प्रयास को पूर्ण करूं, ये कर्म है। भक्ति में जैसे स्वामी और जैसे वैष्णव समुदाय हमको आदेश करे, इच्छा करे, उस इच्छा को पूर्ण करना ही वास्तव में हमारा प्रयास है। तो इसलिए यहां पर दो हिज वाव वॉज इनकम्प्लीट बाय माई ब्लेसिंग्स द 99 हैज बिकम परफेक्ट। वो 99 परिपूर्ण हो गया क्योंकि उस परिपूर्णता का मूल कारण क्या है? वैष्णव कृपा। तो इसलिए पायाजार आज्ञादन ब्रजेर वैष्णव गंतार मध्य मुख्य हरिदास चैतन्य बिलास सिंधु कल्लोलेर एक बिंदु तहा कणा कोहे कृष्णदास। तो वैष्णवों की आज्ञा के धन को प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके जब हम कोई कार्य संपन्न करेंगे तो अवश्य वो कार्य पूरा होगा। और इसलिए कविराज गोस्वामी 95 वर्ष की आयु में भी वैष्णवों के आशीर्वाद के लिए लालाय थे। छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सबार श्री चरण सबे मोरे करह संतोष स्वरूप गोसाईर मत रूप रघुनाथ जाने अथ ताहा लिखी नाही मुरदोष। कहते हैं इस समुदाय में ब्रज में जितने भी छोटे बड़े भक्तगण जो कोई भी हो उन सभी के आशीर्वाद का मैं अभिलाषी हूं, क्योंकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो तो मेरे इस सेवा में कोई भी भूल चूक हो, कमी हो, वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए हमारे इस कथा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? What is the conclusion of this कथा? The power of blessings makes up for all so-called imperfections। वैष्णव आशीर्वाद और कृपा से सारी कमी त्रुटि दूर हो जाती है। और इसलिए जब आपको लगे कि मेरा इस वैष्णव के साथ अच्छा संबंध नहीं बन पा रहा, उस वैष्णव के साथ अच्छा संबंध नहीं बन पा रहा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी ऐसे वैष्णव का आश्रय लें जिनके प्रति हम दोनों की श्रद्धा हो, और फिर उनके बताए गए निर्देश के अनुसार जब हम दोनों काम करेंगे तो हमारा संबंध फिर सुधरने लगेगा। इस प्रकार ये बड़ा सुंदर प्रसंग है जहां पर इंद्र और पृथु दोनों ही भगवान के अवतार, लेकिन किसी प्रासंगिक कारण से दोनों के बीच बड़ा महान क्रांतिकारी मतभेद उत्पन्न होता है जिसके कारण एक दूसरे पर वो टूटने लगते हैं और परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है कि एक दूसरे की हत्या करने पर तुल जाते हैं। तब जाकर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और इसलिए समझना चाहिए हम सभी ब्रह्म संप्रदाय में हैं और ब्रह्म संप्रदाय में भी ऐसे सब मतभेद होते रहेंगे। ब्रह्मा जी भी आकर दोनों के बीच मतभेद को दूर करने का प्रयास किए, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए that we should always expect differences of opinion to crop up, we should expect conflicts, and we should also accept the instructions and the guidance of senior Vaishnavas as a solution to these differences। अर्थात जब हमारे वैष्णव संबंधों को सुधारने के लिए आवश्यकता आए वैष्णव संबंधों को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम किसी महान वैष्णव का आश्रय लें, किसी सीनियर वैष्णव का आश्रय लें और उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हों। कोई एक जीवित वैष्णव तो होना चाहिए जिसके आदेश के अनुसार हम लोग आगे चलने के लिए तैयार हों। कोई हमारे जीवन में आज के तारीख में कोई एक जीवित वैष्णव ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे क्रोध के भयंकर चोटी पर भी, मान लो भयंकर तीव्र क्रोध की पराकाष्ठा हम अनुभव कर रहे हों, जैसे पृथु महाराज की अवस्था थी। पृथु महाराज क्षत्रिय थे, बलवान थे, क्रोधित भी थे। तो जब पूरे फोर्थ गियर फुल स्पीड 200 माइल्स पर आवर पे जब क्रोध चल रहा हो, तब कोई एक जीवित वैष्णव हो जो आपके उस क्रोध के 200 माइल्स पर आवर वाली गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगा सके। अगर कोई एक ऐसा वैष्णव है तो आपका जीवन सुरक्षित है। अगर ऐसा कोई नहीं तो फिर बड़ा कठिन है। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी दोनों के बीच आए और दोनों के बीच के जो मतभेद को दूर किए, और इंद्र और पृथु महाराज दोनों को बधाई देनी चाहिए कि दोनों ने ब्रह्मा जी के बताए गए सुंदर मार्ग को अपनाया, अवलंबन किया और अपने मतभेद को दूर करने के लिए तैयार हुए। प्रभुपाद ये नहीं कहते कि मतभेद दूर किए, उन्होंने कहा अपने मतभेदों को एडजस्ट किया। दे एडजस्टेड द कॉज ऑफ देयर एनवी। और इस प्रकार हम इस प्रकार का एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हों, और जो ऐसे एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो वह वास्तव में वैष्णव संबंध को अपने जीवन में उतार सकता है। राधानाथ महाराज कहते हैं, If we do not have the power to endlessly forgive, we cannot establish Vaishnava relationship. तो इसलिए गीता में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तीन सूत्रीय कार्यक्रम भगवान बताते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले सरेंडर, आत्मसमर्पण, परिप्रश्न, प्रश्न करो, सेवया, सेवा करो, तब गुरु आपको ज्ञान देंगे। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भैया ये तीन काम तो बाहरी रूप से भी कर सकते हो। वी कैन एक्सटर्नली शो आई एम सरेंडरिंग, आई एम वेरी क्यूरियस, आई एम सर्विंग। तो ये तीन बातों को कई बार हम लोग छुपा सकते हैं और दंभ का आश्रय ले सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तो गुरु बेचारे सोचते हैं अरे कितना प्रेमी शिष्य है, सरेंडर कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन शिष्य के मन में कपट भरा हुआ है। लेकिन गुरु को लगता है कर रहा है, चलो ज्ञान दिया। तो आचार्यगण कहते हैं भले गुरु ज्ञान दे, वो ज्ञान शिष्य के कानों के अंदर से हृदय के अंदर उतरा है कि नहीं उसका प्रमाण क्या है। आगे के श्लोक में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, है ना। तो तीन बातें कहते हैं, अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के माध्यम से शिष्य के हृदय के अंदर उतरा है, देर आर थ्री सिम्टम्स ऑफ दैट। श्रद्धावान, उसकी श्रद्धा का विकास होगा। दूसरा पराम शांतिम, है ना, और बड़ी शांति संतोष की अनुभूति होगी। और फिर उसकी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आएगा। फेथ इंक्रीजेस, Satisfaction increases and sense control increases. So if tendency for sense gratification goes away, faith in the midst of crisis increases, and a deep-rooted satisfaction in all situations come. Then you can be assured that spiritual knowledge given by Guru is entering into the system. और इसलिए हमें चाहिए कि ये तीन प्रमाणों को लेकर ही हम आगे चले। फिर कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, लेकिन सबसे गड़बड़ है जो संशय करता रहे, वो विनश्यति। तो इंद्र और पृथु दोनों के अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी? वो संशय नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी को देखकर पृथु महाराज ने संशय नहीं किया, ये अभी क्यों टपक गए, मेरा अभी मूड हो रहा था इसको समाप्त कर दूं, 5 मिनट लेट आते तो अभी तक मैटर समाप्त हो गया होता, अभी क्यों प्रकट हो गए। संशय नहीं किया, श्रद्धा के साथ उनकी बातों को स्वीकार किया, आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जो स्नेह का संबंध स्थापित हुआ, उससे उनकी श्रद्धा का विकास हुआ, उनकी इंद्रिय निग्रह बढ़ी और मानसिक संतोष की उत्पत्ति हुई। सो इफ यू आर हैविंग सैटिस्फाइंग वैष्णव रिलेशनशिप्स, व्हाट आर द सिम्टम्स? नंबर वन, योर फेथ विल ग्रो, योर सेंस कंट्रोल एंड योर सेंस सैटिस्फैक्शन विल ग्रो, एंड योर फीलिंग ऑफ डीप रूटेड पीस एंड जॉय विल ग्रो। यू विल बिकम फेथफुल, joyful, and you will become peaceful. इस तरह से हम लोग वैष्णव समुदाय में वैष्णव संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं राधेश्याम प्रभु और पूना मंदिर के सभी भक्तों को प्रणाम करके धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ कथा करने का अवसर दिया, और आशा है कि आप लोग ऑनलाइन जन्माष्टमी कार्यक्रम बड़े भव्य रूप से मनाएंगे, और श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की असीम कृपा पूना और आसपास के शहरों के कोटि कोटि लोगों के ऊपर हो, और वो सभी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति के इस लहर में एक अभिन्न अंग बन जाए। इस प्रार्थना के साथ, इस कामना के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
कृष्णा, थैंक यू सो मच रोजी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली यू हैव बैक टू बैक मीटिंग्स, हमारे मीटिंग से पहले भी आपका मीटिंग चल रहा था, एंड स्टिल यू गेव अस टाइम, थैंक यू सो मच। एंड सम पॉइंट्स आई कुड ओनली फ्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू टेल। एनवी ओवरकमिंग, basically to overcome envy, we have to establish good relationships. We never know who will become dear to Krishna, so better be careful with everybody. Material life, if somebody is going ahead, we feel insecure, but spiritual life is different. The more people progress and go ahead, it is better for us. Medicine to overcome envy is available in bhakti only. See ourselves as patients in a hospital. Serving and pleasing Vaishnava is more important than meeting our goals. And the power of blessings make up for all kinds of shortcomings. And the symptoms of one who is having good relationships is become faithful, joyful, and peaceful. So in this way, although envy is such a difficult subject, but you have made it very easy for us. Thank you so much, Guruji. And thank you for your blessings that we do online Janmashtami very well also. Our plan is to celebrate in 1,000 homes, online Janmashtami. Uska announcement bhi karenge. So, and as soon as the COVID is over, and we beg you to come and visit us and give your association on support. Thank you so much, Ruth.
Thank you.
Thank you. So, aye, we will basically thank Gaurang Prabhu. His guest Gaurang Prabhu, we're loudly chanting Hari Bol 3 times. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Thank you so much. अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, दो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हैं जन्माष्टमी के बारे में। एक ऑनलाइन जन्माष्टमी का अनाउंसमेंट है, और उसके बाद फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट है। दोनों मिला के विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, तो कृपया स्टे विद अस। ऑनलाइन जन्माष्टमी को जो गौरंग प्रभु बता रहे थे, ये जो क्लिप है, बिकॉज वी आर जन्माष्टमी हम मंदिर नहीं आ सकेंगे, तो जन्माष्टमी घर में मना सकते हैं, और जैसे भी हो सके जिनके पास डेटीज है, फोटोज से वी कैन ऑल सेलिब्रेट। हमारे ये लक्ष्य है कि कम से कम 1000 घर में हम जन्माष्टमी मना सकते हैं, और मनाने के बाद उसके 3 मिनट की वीडियो आप भेजिए मंदिर को, और उसमें जो अच्छी तरह से करते हैं उनका वीडियो जो इस्कॉन पुणे के वेबसाइट पे वो शेयर किया जाएगा, और कुछ महाप्रसाद भी उसके साथ प्राइस दिया जाएगा। तो डिटेल्स है कैसे जन्माष्टमी मनाने के, घर में मनाने के लिए क्या पानी से मना सकते हैं क्योंकि फ्लावर्स नहीं है, काफी सारे चीज नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि भक्त बाहर जाके कोविड में रिस्क भी लेना है, तो हाउ टू डू, और ये जब इसे कैसे अपने घर में जो भी चीज है इनसे कैसे करना है, एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन लिया जाएगा। तो जिनको इसमें पार्टिसिपेट करना है, और हम चाहते हैं कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करे वो लिंक वहां पे है https://nvcc20/2020। और कुछ इसके बारे में ज्यादा संपर्क, ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। इसका एक मैसेज और ईमेल भी कल या परसों सर्कुलेट होगा, अधिक सो यू कैन सी दैट मैसेज। दूसरा ये था कि जो जन्माष्टमी का फंड रेजिंग चल रहा है, जैसे कल श्वेतदीप्रो बता रहे थे कि अभी नाउ अभी नेक्स्ट वीक में काफी लोगों का जो भी सैलरीड है इनका सैलरी भी आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट वीक से लेकर मेबी कल सोमवार से हम वी कैन इंटेंसिफाई आवर एफर्ट्स फॉर फंड रेजिंग। तो एक छोटा सा टूल है जिससे हम अच्छी तरह से फंड रेजिंग कर सकते हैं कि गए पिछले 10 साल में हम जितने भी फंड्स लेके आए हैं उन सभी के डिटेल जो है मंदिर के पास है, और जैसे हम कह रहे थे कि एक मात्र अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप देख सकेंगे कि मैंने कौन कौन से लोगों से दान लेके आया है, और उनको उनको फोन नंबर ही आपको मिलेगा और उनको वापस कॉल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यू जस्ट कॉल पीपल फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स वी मे गेट डोनेशंस वेरी इजीली। जयदेवपुर बता रहे थे कि कांग्रेगेशन बड़ा है, 1500 प्लस फैमिली से, लेकिन हार्डली 700 पीपल ओनली पार्टिसिपेट इन फन मैराथन आधा, बट इस फैसिलिटीज हम इससे भी बाय डूइंग दिस विद दिस यूटिलिटी वी कैन मोर ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट। तो वीडियो मैं एक शेयर करूंगा, इट्स 3 मिनट वीडियो, उसके बाद विराम देंगे, तो प्लीज वॉच दिस, आई विल शेयर दिस वीडियो नाउ। मोबाइल फोन के माध्यम से हाउ ICS सिस्टम कैसा एक्सेस करना है, छोटा सा वीडियो है, इसका वीडियो बाद भी वापस हम शेयर भी करेंगे, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं कि कितना सरल है, सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के, आपका मोबाइल नंबर जो ICS में अगर एक काउंसिलिंग के अंडर आप जुड़े हुए हो तो आप 1-2 मिनट के अंदर आप अपना पूरा डोनर डेटा कैसे देखेंगे यहाँ पे दिखाई दिया रहा है। आपका नाम और मोबाइल नंबर डाल के आप सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक SMS आएगा, एक SMS आ गया कि आपका अप्रूव हो गया एक्सेस। उसके बाद फिर वो मोबाइल पहली बार रिक्वेस्ट को आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद सिर्फ लॉगिन करना है, और जब भी मोबाइल फोन डालते हैं तो 9 मंथ रुपया उसको कोड डालिए, कंट्री कोड डालना आवश्यक है। एक 6 डिजिट को मोबाइल फोन पे आपको आएगा, ET72375, और ये सब मोबाइल फोन से हो जाएगा, कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ऐप की जरूरत नहीं है, आपको जिस मोबाइल नंबर अगर सिस्टम में है, आप उस काउंसलर से जुड़े हो तो ये पूरा डेटा आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो माई डोनर्स करके जो ऑप्शन है, ये पूरा दिस इज वेयर द मैजिक इज, यू कैन बेसिकली सी ऑल द डोनेशंस, ये देखिए यहाँ पे पिछले जितने भी साल में आपने कौन सा भी डोनेशन लेके वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वापस आई जस्ट स्क्रॉल बैक वन मोमेंट, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो स्क्रीन है यहाँ पे हम देख सकेंगे कि अभिषेक विजय फरंडी, देखिए जो हमारे इवन कभी भी पिछले 10 साल में कभी उनका मोबाइल नंबर भी है, उनके ईमेल आईडी भी है, उनके फ्लैट नंबर भी है और उन्होंने कितना लक्ष्मी भी दिया है वो भी नीचे आपको दिखेगा। तो आप सिर्फ उसको फोन कर सकते हैं और यहीं से इस फोन में से वो जो फोन नंबर दिखा है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप अलग से नंबर नोट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट मोबाइल नंबर, आपको सीधा फोन एप्लीकेशन में जाएगा, उनको कॉल कर सकते हो, कह सकते हो कि अभिषेक विजय फरंडी जी आपने जन्माष्टमी में हमें डोनेशन दिया है, इस साल भी जन्माष्टमी में कुछ योगदान देना चाहते हैं। ये पूरा करने के लिए मतलब हर एक डिवोटी अपने डोनर से कांटेक्ट करने के लिए इस तरह से मात्र एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो कृपया निवेदन है भक्तों से इस फैसिलिटी का पूरा लाभ लीजिए। पावन निताय प्रभु ने बहुत मेहनत करके ये फैसिलिटी बनाया है, हम चाहते हैं कि भक्त इसका पूरा फायदा उठाए। तो बस इतना अनाउंसमेंट से, एनीथिंग एल्स श्वेति प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे प्रभु जन्माष्टमी के बारे में? प्रभु जी म्यूट पे है, प्रभु जी श्वेत प्रभु आप म्यूट पे हो प्रभु। हाँ यस
यस यस, तो कल ही मेजर अनाउंसमेंट कर दिया है,
ठीक है।
और अभी एज यूजुअल गौरांग प्रभु ने काफी प्रेरणा दी है, तो जब भी कठिन समस्या आती है तब गौरांग प्रभु का प्रवचन से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है और आशा है कि सचमुच काफी पॉजिटिव, मतलब कोरोना भी है तो भी, लेकिन इस्कॉन का जिस प्रकार नाम फैला है ना, तो थोड़ा भी मुझे लगता नहीं है कि ये अपने लिए कुछ इस बार डिफिकल्ट है। तो सिर्फ भक्तों ने, आपने जो अभी टूल दिया है कि लास्ट ईयर का डेटा भी मिलेगा और सिर्फ बाहर जाके अप्रोच करना है। मैं लास्ट टाइम शेयर कर रहा था श्रीधर कृष्ण प्रभु का एग्जाम्पल, वो आदमी ने आज तक कभी भी इस्कॉन को डोनेशन नहीं दिया और टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना अन्नामृत का पूरा 35 लाख लोगों को खाना खिलाया वो पड़ा, और ही हैज अग्रीड टू गिव 10,000 rupees पर मंथ, फिर स्टार्टेड गिविंग 10,000 rupees पर मंथ। ये सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ मांगा नहीं तो लोग ये स्टेप ले रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग 4 crore इकट्ठा कर सकते हैं एज अ कॉन्ग्रीगेशन, और ब्रह्मचारियों को भी 1 crore आ सकता है। सिर्फ हमें उत्साह के साथ करना है, हारना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एक निगेटिव थॉट लेके जाते हैं कि कोरोना है कोरोना है, कुछ नहीं है। मतलब हमें फोन पे करना है, कहाँ बाहर जाना है। और सबसे अच्छा टूल यह है कि मंदिर ने, गवर्नमेंट से भी ज्यादा मंदिर ने किया है, आज पूरे घर घर में इस्कॉन का नाम गया है। और आज भी मैं एक स्लम एरिया में गया था कि जहां प्रैक्टिकली हम 700 families को खाना आज से पूरा एक महीना दे रहे हैं। देन कोरोना, जैसे कल मैंने शेयर किया आपको कि सीसीडी कोरोना केयर सेंटर 3,000 bed वाला पुणे का वन ऑफ द बेस्ट कोरोना केयर सेंटर हमने स्पिरिचुअलाइज कर दिया है कि हर एक रूम में गीता, हर एक रूम में किताब, हर एक रूम में प्रभुपाद जी का ट्यून और सुबह दोपहर शाम जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो इस प्रकार बहुत बड़ा नाम इस्कॉन का हो रहा है। हमें सब मिलकर ये करना है क्योंकि इस बार हमें किसी भी हालत में करना है। जब नॉर्मल सिचुएशन है तब डर नहीं था क्योंकि हमारा एंटरप्राइजरशिप हमको सपोर्ट करता था, लेकिन आने वाले 3-4 महीने वो एंटरप्राइजरशिप कैसा मूव होगा किसको पता नहीं है। तो इसीलिए किसी भी हालत में हमको ये 5 crore तो करना ही है बेसिक हमारा टेम्पल रन करने के लिए। तो मैं सभी भक्तों को निवेदन करूंगा और बहुत ही मतलब व्यक्तिगत मेरे को, मुझे गौरांग प्रभु से बहुत प्रेरणा मिलती है और ये 2 दिन के लेक्चर में भी बहुत सारी अच्छी इनपुट मुझे मिले कि जो मैं मेरे जीवन भी उतारने के लिए भी मुझे सहायता होगी। तो हर बार गौरांग प्रभु से ऐसे सभी को प्रेरणा मिलती है। तो यही उत्साह के साथ मेरे साथ जीवानंद प्रभु भी शेयर कर रहे थे कि जब भी जो गौरांग प्रभु बात करते हैं तो कई सारे लोग आगे आते हैं डोनेशन के लिए, और बोले जैसे मैंने उनका कल प्रवचन सुना तो आज सुबह सुबह मैंने 20 लोगों को फोन किए थे। तो इस प्रकार सभी लोग उत्साह के साथ 20-25 भी फोन करे तो हमें ये टारगेट अचीव करना डिफिकल्ट नहीं है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः एक बार गौरांग प्रभु को धन्यवाद दूंगा। हरि बोल।
गौरांग प्रभु की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय।
जी।